Agni, keep the projector, laptop down. Someone else will operate. I can't operate. So keep it somewhere near the projector. And this book you can keep it.
आपके भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र की तरफ से हार्दिक स्वागत है इस तीन दिनों की कृष्ण कथा में। आज की कथा का शुरुआत श्रीमान अखिलेश करेंगे और उनके स्वागत में एक महादेव श्री महासती देवी मंदिर है, इस टेंपल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो तो यहाँ पर आकर के प्रभु जी का माल्य अर्पण करेंगे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे श्रीमान चंद्रू एस नायक जी को कृपया यहाँ पर आइए और प्रभु जी का सम्मान। हरे कृष्ण।
Speak a few words. Hare Krishna. Hare Krishna. दो शब्द आप कहिए ताकि अच्छा शुरुआत हो जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप बोल दीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। माननीय स्वामी जी को इधर हार्दिक स्वागत है और इधर का तीन दिन का प्रवचन कार्यक्रम निर्विघ्न से होने का वास्ते आपका पास मांगता हूँ, ऐसा आप आपका कथा कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते।
थैंक यू वेरी मच। हरे
सबको आशीर्वाद।
आशीर्वाद देना भगवान का काम है, हम लोग केवल प्रार्थना कर सकते हैं। ये साउंड थोड़ा ठीक बढ़ाने को बोलना। सुन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना यमुना तीरावन चारे राधा माधव ब्रज बिहारी जय राधा माधव ब्रज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव ब्रज बिहारी जय राधा माधव ब्रज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तरषद श्री श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरा. ये साउंड क्लियर नहीं है, थोड़ा साउंड वालों को बोलिए थोड़ा क्लियर कर. आप लोगों को पीछे सुनाई दे रहा है? पीछे एकदम जो पीछे बैठे हाथ ऊपर करें अगर सुनाई दे रहा है. अच्छा, हरे कृष्ण. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम बहुत आभारी हैं इस मंदिर के व्यवस्थापकों का, यहाँ कुछ मैनेजमेंट है उनके, कि उन्होंने इस वर्ष भी इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की है भगवान श्री कृष्ण की कथा के लिए। आप सब के भी आभारी हैं कि आप सब यहाँ पर आए हैं श्री कृष्ण की कथा को सुनने के लिए। पिछले वर्ष करीब इसी समय महाभारत की कथा 3 दिवस की यहाँ पर की थी, लेकिन वो ये समय था जब कार्तिक का महीना समाप्त हो चुका था, और इस वर्ष जब ये कथा का आयोजन हुआ तो ये वो महीना है जब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर लीला इस महीने में की, विशेष करके दीपावली के दिन की, और वो थी दामोदर लीला। और इसीलिए इस महीने का नाम पड़ा दामोदर महीना, दामोदर मास। आप सब जानते होंगे कि वैदिक सभ्यता में महीनों के नाम भगवान के नाम के ऊपर दिए जाते हैं, जैसे दामोदर महीना ये भगवान का महीना है। वैसे हम लोग जिन महीनों को जानते हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, अगर उनको देखा जाए और उनकी तुलना जो वैदिक काल में महीनों को या जो वैदिक सभ्यता में महीनों को नाम दिए जाते हैं, तो बहुत अंतर है। हमारा वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से शुरू होता है जनवरी से। वरी मतलब चिंता करना, है ना? तो जन मतलब लोग और वरी मतलब चिंता करना। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारा साल ही शुरू होता है ये कहकर कि सब लोग चिंता करो, जनवरी फरवरी चलती रहती है, वही वरी चलती रहती है। लेकिन देखिए, जब महीनों को भगवान के नाम से पुकारा जाए, दामोदर महीना, केशव महीना, कितना सुंदर लगता है, लाभ भी होता है, क्योंकि भगवान का नाम मुख से निकलता है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, शास्त्रों में वर्णन है
कि अगर कोई अनजाने में भी ले ले, हंसी मजाक में ले ले, सोते हुए ले ले, जागते हुए ले ले, अनजाने में ले ले, जबरदस्ती ले ले, या फिर आधा ही ले ले, तो भी उसे लाभ हो जाता। तो इसीलिए पहले के समय में महीनों के नाम, बच्चों के नाम, घर में सभी चीज़ों के नाम, ये भगवान के नाम पर रखे जाते थे। आज भी अगर आप लोग देखें जो बड़े बूढ़े हैं, उनके नाम आज भी भगवान या भगवान से संबंधित उनके भक्तों के ऊपर हैं। लेकिन अब ये नया ज़माना आया है जहाँ ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। न रखने वाले अर्थ को जानते हैं, न जिनके नाम रखे जाते हैं वो अर्थ को जानते हैं। वैसे कलयुग में सभी चीज़ें अपने अर्थ को खो रही हैं। लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं आधुनिकता के नाम पर कि कभी कभी तो शर्म आती है। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, हमारे भक्त हैं, उनके पास एक महिला आई और उन्होंने कहा कि हमने अपनी लड़की का बड़ा ही विशेष नाम रखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या नाम रखा है, तो उन्होंने कहा श्वा, श्वा नाम रखा है। तो डॉक्टर ने पूछा भाई ये श्वा नाम क्यों रखा, उन्होंने कहा क्योंकि ये बड़ा नया नाम है, किसी का नाम नहीं होता श्वा, इसीलिए हमने रखा। डॉक्टर ने कहा आप जानते हैं श्वा मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा श्वान कुत्ते को कहते हैं और श्वा ये मिसेस कुत्ते को कहते हैं और आप बड़े गर्व से इस नाम को रख रहे हो अपनी बच्ची का और जीवन भर उसको आप भी श्वा बुलाते रहोगे, उसके मित्र श्वा बुलाते रहेंगे, वो खुद का नाम श्वा बोलती रहेगी, क्या लाभ होगा। इसीलिए नामों का बड़ा महत्व है। नाम वो होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो, नाम वो होने चाहिए जो हमारे हृदय को शुद्ध करे, नाम वो होना चाहिए जो भगवान से संबंधित हो, ताकि जाने अनजाने में हम भगवान का नाम लेते रहें, जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर कथा है अजामिल की। ऐसा पापी व्यक्ति जो सारे पाप कार्य करता था, चोरी करना, डाका डालना, लोगों को धोखा देना, किसी तरह से पैसे चुरा लेना, ये सारे कार्य थे उसके, और जीवन में एक ही अच्छा काम किया उसने, अपने छोटे से बच्चे का नाम नारायण रखा। और जब मृत्यु का समय आया, क्योंकि आसक्त था अपने पुत्र से, छोटा सा बच्चा था, बड़ा 5 साल का, बड़ा प्रेम करता था अजामिल, तो मृत्यु का समय आया, अजामिल ने देखा कि बड़े भयानक लोग उसको ले जाने के लिए आ रहे हैं। अजामिल घबरा गया, चिल्लाने लगा और क्योंकि अपने पुत्र से इतना प्रेम करता था इसलिए नारायण पुकारने लगा, नारायण नारायण। नाम तो उसने अपने बच्चे का पुकारा, लेकिन नाम है भगवान का। और इसीलिए भागवतम में वर्णन है कि जो भयानक लोग उसे लेने आए थे, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उनको रोक दिया गया क्योंकि नारायण नाम उच्चारण हुआ। श्रीमद् भागवत में विष्णुदूत उनको कहते हैं कि ये जो 4 अक्षर इसने मुख से बोल दिए नारायण, जितने भी इसके पाप थे कट गए। भगवान के नाम की महिमा है। इसीलिए इस कलयुग में अगर हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, कई बार लोग कहते हैं किसने देखा है मृत्यु के बाद, आप लोग बात करते हैं आध्यात्मिक जगत की, आप बात करते हैं मृत्यु के बाद की, अरे किसने देखा है। तो ठीक है, अगर इसी जन्म में सुखी रहना चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, भगवान का नाम लेना चाहिए। सुख भगवान से आता है, संतुष्टि भगवान से आती है, पैसा ऐश्वर्य, यश, मान सम्मान सुख नहीं देता, थोड़े समय के लिए हृदय को शांत करता है, बस थोड़े समय के लिए, और फिर वही चिंता है। आप देख लीजिए, इसके प्रमाण हैं। जिनके पास बहुत धन है क्या वो सुखी हैं? जो बहुत प्रसिद्ध हैं क्या वो सुखी हैं? अगर ऐसा होता तो कभी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता, कभी कोई धनवान व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता, लेकिन ऐसे हजारों उदाहरण हैं भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, जहां ऐसे स्तर के लोगों ने आत्महत्या की जो भौतिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से बड़े ऊंचे स्तर पर थे। तो इसलिए अगर हम मृत्यु के बाद जीवन को स्वीकारें तो भी कृष्ण का नाम लेना चाहिए, और अगर मृत्यु के बाद के जीवन को हम नहीं स्वीकारते हैं, इसी जीवन को मानते हैं केवल, तो भी कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और यही सारे शास्त्रों का सार है। बहुत सुंदर श्लोक में कहा गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्तौ च मध्ये च हरि ही सर्वत्र कीयते। चाहे वेद ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, आदौ अर्थात शुरुआत में, अंतौ अंत में, मध्ये च और मध्य में, हरि ही सर्वत्र कीयते, केवल श्री हरि का ही गुणगान है। और ऐसे श्री हरि, श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं, वृंदावन में आते हैं लीलाएं करने के लिए, बहुत सुंदर लीलाएं। और हैं कौन वो? ये जहां हम बैठे हुए हैं ये पृथ्वी का एक हिस्सा है, ऐसी कई पृथ्वियां हैं और वो सब मिलकर एक भूमंडल बनाती हैं। ऐसे 14 भुवन हैं, एक नहीं 14 भुवन हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये ऊंचे लोक हैं। और उन 14 भुवनों के परे एक विशाल आध्यात्मिक जगत है। भगवद गीता में भगवान इसका वर्णन करते हैं, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। ये जो भौतिक जगत है, ये कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। ये हमारा शरीर भी ऐसा है, हमारा जीवन भी ऐसा है, आज है कल नहीं, लेकिन इसके परे सनातनः। भगवान कहते हैं ऐसा जगत है जहां मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, जन्म नहीं है। आप केवल कल्पना कीजिए कुछ समय के लिए कि हम एक ऐसे स्थान में पहुंच जाएं जहां कोई बूढ़ा नहीं होता, जहां कोई मरता नहीं है। आज हमारे लिए ये कल्पना है, शास्त्र इसे सत्य बताते हैं। वैसे शास्त्र ही क्यों, वैज्ञानिकों ने भी एक ऐसा स्थान खोज निकाला है इसी ब्रह्मांड में जिसे वो ब्लैक होल कहते हैं। ये वो एक ऐसा स्थान है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बार अगर आप वहां पहुंच जाएं तो आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है। तो देखिए, अगर इस जगत में ऐसा कोई स्थान हो सकता है तो फिर आध्यात्मिक जगत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी उम्र नहीं बढ़े, हमारी मृत्यु नहीं हो। वो जगत वैकुंठ कहलाता है, कुंठ अर्थात कष्ट। और कष्ट क्या है? भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जगत में 4 ही दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा और बीमारी, बस। और इनका उपाय किसी के पास नहीं है। शास्त्र देते हैं इनका, भगवान देते हैं भगवत गीता में इसका उपाय कैसे बचना चाहिए। तो इनके परे जो वैकुंठ है और वैकुंठ में भी जो एक प्रमुख लोक है जिसे गोलोक कहते हैं, वहां श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। ये उनका लोक है, गोलोक। गो अर्थात गायें, गायें बहुत प्रिय हैं कृष्ण को, ग्वाले हैं वो। तो ऐसे लोक से वो उतर कर आते हैं इस पृथ्वी पर, इसीलिए कभी कभी श्री कृष्ण को भी अवतार कह दिया जाता है। वैसे वो अवतार है नहीं, वो तो अवतारी हैं। अवतारी अर्थात जिनसे सारे अवतार आते हैं, लेकिन क्योंकि वे अपने धाम से उतर कर नीचे आते हैं इसलिए उन्हें अवतार कह दिया जाता है। अवतरति इति अवतार। तो ऐसे श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं कुछ उद्देश्य को लेकर। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष्यं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान आते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष्यं देहमास्थितः, और फिर भजते तादृशीं क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसी लीलाएं करते हैं, सुंदर लीलाएं, जिनको केवल सुनने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये भगवान की लीलाएं। तो भगवान आते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, भगवान आते हैं असुरों का नाश करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां। भगवान आते हैं ऐसे दुष्ट लोगों का वध करने के लिए जो उत्पात मचाते हैं। इस कलयुग में ऐसे कोई महान व्यक्ति नहीं है जो इतना उत्पात मचाएं जिनके लिए भगवान को आना पड़े। पूर्व काल में हुए हैं बड़े बड़े आतंकवादी, आजकल के आतंकवादी तो बड़े छोटे आतंकवादी हैं। हिरण्यकश्यप वो कोई इंटरनेशनल लेवल का आतंकवादी नहीं था, वो इंटर प्लैनेटरी लेवल का आतंकवादी था। अलग अलग लोकों में जाके आतंक मचाया था उसने, दूसरे लोक में, स्वर्ग लोक में जाकर आतंक मचा दिया था। तो देखिए पहले के जो आतंकवादी हुआ करते थे वो जरा बड़े बड़े स्तर के होते थे, आजकल तो छोटे मोटे आतंकवादी हैं किसी एक राज्य में, किसी एक देश में, ज्यादातर दो तीन देश में आतंक मचाते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों का नाश करने के लिए आते हैं, आज भी आते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में आते थे, वैदिक सभ्यता में आते थे, हजारों साल पहले पिछले युग में आते थे, आज भगवान आते नहीं हैं। भगवान आज भी आते हैं, आज भी असुरों का नाश करते हैं। और कैसे करते हैं? पहले भगवान आते थे सीधे मारते थे असुरों को, क्योंकि उस समय असुर अलग रहते थे। आप देखिए रामायण का वर्णन, श्री रामचंद्र जी अयोध्या में थे और लंका में थे रावण, बहुत दूर। लेकिन जैसे ये कलयुग बढ़ा, अब कलयुग में जैसे जैसे युग बढ़ा, जैसे त्रेता युग में दूर दूर में रहते थे, द्वापर युग में एक ही घर में आ गए सुर और असुर, युधिष्ठिर और दुर्योधन, एक ही घर में, एक ही परिवार में। और फिर जब युग बढ़ा, आज कलयुग है, तो ये दोनों अब कहां गए? पहले दूर दूर थे, पास आए, एक ही घर में आए, और अब कलयुग में एक ही शरीर में आ गए। आप सब अगर अपने ध्यान से अपने मन को देखें तो ये दोनों प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं। कभी हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं और कभी बहुत बुरा। कभी हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत कर दे तो हम उनके बारे में बुरा भी सोचते हैं। इसलिए दोनों हमारे हृदय में हैं। और भगवान आते हैं लेकिन बाहरी दृष्टि से किसी का वध नहीं करते, जो अंदर असुर बैठे हैं उनका वध करते हैं भगवान, हृदय में बैठे हुए असुर का। और वो कैसे करते हैं ये आज हम श्रवण करेंगे। तो वही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को छोड़कर आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में प्रकट हुए। बड़ी सुंदर लीलाएं की श्री कृष्ण ने, आज भी लोग स्मरण करते हैं। बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाने के लिए प्रयास किया है। जैसे योगी, जो योगी होते हैं वो योग क्रिया के द्वारा, ये बच्चों को थोड़ा चुप बैठना चाहिए जो आगे बैठे हैं, आपको स्कूल में सिखाया जाता है ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, यस थैंक यू। तो जिस तरह से श्री कृष्ण सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, बहुत सुंदर लीलाएं, आते हैं वृंदावन में प्रकट होते हैं और बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, किस लिए? हम सबका हृदय अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि जो कठोर तपस्या करते हैं लेकिन आनंद लेते हैं कृष्ण की कथा में। इसीलिए आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य में हजारों ऋषि बैठे और उन्होंने यज्ञ किए जन कल्याण के लिए। उन्होंने सोचा कि कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में लोगों का लाभ के लिए हमें यज्ञ करने चाहिए। उन्होंने यज्ञ किए लेकिन वो स्वयं कहते हैं सुत गोस्वामी से कि हे सुत गोस्वामी, हमने इतने समय तक यज्ञ किया लेकिन यज्ञ करके हमें क्या प्राप्त हुआ? केवल हमारा मुंह काला हुआ यज्ञ के धुएं से, बस इतना ही प्राप्त हुआ। अब आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए ताकि हमारा लाभ हो सके। और फिर ये सारा भागवतम प्रकट हुआ। सुत गोस्वामी ने भागवत सुनाया, वही भागवत जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। और उसमें 10वें स्कंद में ये कृष्ण की लीलाएं हैं। तो बाल लीलाएं, बहुत सुंदर बाल लीलाएं की श्री कृष्ण ने। असुरों का भी वध किया, पूतना का, तृणावर्त, शक्ता असुर, तृणावर्त, ऐसे सब का वध किया। और अब श्री कृष्ण 3 साल के हो गए। तो हम लोग इस कार्तिक महीने में हैं, दामोदर महीने में प्रयास कर रहे हैं दामोदर लीला का वर्णन का। अगले 2 दिनों में, अगले आने वाले 2-3 दिनों में इस लीला का वर्णन। लेकिन इससे पहले ये वर्णन इसलिए किया कि जान लें कि जिनका वर्णन हो रहा है, जिन लीलाओं का हम वर्णन कर रहे हैं वो कौन है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, आपकी तरह हमारी तरह साधारण नहीं है, वो भगवान है। ये जानकर फिर उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे आता, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, इस चीज को जानकर जो लोग मेरी भक्ति में लगते हैं वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कृष्ण के लीलाओं का श्रवण से पहले हमें यह जान लेना कि श्री कृष्ण कौन हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण की इन लीलाओं का यहां पर वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न किया, परीक्षित महाराज सुन रहे थे और बीच बीच में प्रश्न करते थे। आपको याद होगा या आपको पता होगा कि श्रीमद् भागवतम ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उस समय सुनाई जब परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे। उनको एक श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, और परीक्षित महाराज ने स्वीकार किया। छोटी सी आयु थी उनकी, कोई बहुत बड़े नहीं थे, वृद्ध नहीं थे, राजा थे सारी पृथ्वी के, त्याग दिया उन्होंने राज्य को। ये नहीं सोचा कि अब केवल 7 दिन है और कुछ कर लूं, धन कमा लूं, थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दूं, नहीं, सब त्याग दिया, कोई आसक्ति नहीं। और फिर गंगा के तट पर बैठे और प्रश्न किया ऋषि मुनियों से कि हे ऋषि, हे मुनि, बताइए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मृत्यु की शैया पर है, सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए? अब तो मैं मरने वाला हूं 7 दिनों में, तो मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कहा महाराज ये कीजिए, किसी ने कहा महाराज वो कीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। उन्होंने कहा आपको श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, श्रोतव्य सुनिए, स्मर्तव्य स्मरण कीजिए, क्योंकि यही अच्छा है। और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। तो अब 4 दिन हो गए सुनते सुनते, कृष्ण की कथा प्रारंभ नहीं हुई। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, पहले उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड कैसे बनता है, कृष्ण के अलग अलग अवतारों का वर्णन किया। 4 दिन हो गए, अब 3 दिन बाकी हैं। 4th दिन परीक्षित महाराज ने कहा अब कृष्ण का वर्णन कीजिए, और फिर श्री कृष्ण का वर्णन प्रारंभ किया। 10वां स्कंद, कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, बहुत सुंदर लीला है कृष्ण के जन्म की। श्री कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में आए, मन में आए, और फिर देवकी के मन में गए, देवकी के मन से उसके गर्भ में गए, और फिर प्रकट हुए देवकी के गर्भ से जन्माष्टमी के दिवस पर। बहुत सुंदर लीला की भगवान ने। और कैसे प्रकट हुए, कुछ साधारण बालक की तरह नहीं। जब साधारण बालक जन्म लेता है, गंदगी लगा हुआ, खून लगा हुआ, नहीं, श्री कृष्ण आए कानों में कुंडल, पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए, घुंघराले बाल, और आते ही अपने माता पिता को उपदेश दे रहे हैं, ये भगवान है। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई बालक का जन्म हुआ और जन्म देते ही वो माता पिता को कहने लगा पूर्व जन्म में आप ये थे? श्री कृष्ण कहते हैं अपने माता पिता को सांत्वना देते, चिंता नहीं करो, पूर्व जन्म में आपने बहुत भक्ति की है मेरी, बहुत तपस्या की है, इसीलिए आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं मैं। और फिर उनको गोकुल ले जाया गया। वसुदेव घबरा गए कि कहीं कंस मार नहीं दे, भगवान को मार नहीं दे। ये तो बड़ी विचित्र बात है कि जब वो जान गए कि ये भगवान है तो फिर डर कैसा। ये प्रेम था वसुदेव और देवकी का। हाँ, आप भगवान है लेकिन फिर भी कंस बड़ा शक्तिशाली है, आप छुपा लीजिए अपने आप को, छोटे से बालक बच जाइए, कंस को बताइएगा नहीं कि आप विष्णु हैं, मार देगा आपको। ये मां का प्रेम है। और फिर वसुदेव उनको टोकरी में रखकर धीरे से ले गए। वर्षा हो रही थी, बड़ी तेज वर्षा, नदी में उफान आ रहा था, लेकिन नदी ने रास्ता दे दिया, यमुना ने रास्ता दे दिया। वसुदेव बड़े प्रेम से चले गए और वहां पर गोकुल में यशोदा के घर पर कृष्ण को रख दिया, उनकी पुत्री को उठा लिया और लेकर वापस आ गए। और श्री कृष्ण ने फिर लीलाएं प्रारंभ की गोकुल में। देखिए, भगवान जब लीला करते हैं तो कैसे कैसे लीला करते हैं। वो देवकी जिसने कई वर्षों तक कष्ट सहा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 पुत्र जिसके मारे गए उसकी आंखों के सामने, कंस बड़ी क्रूरता से मारता था। जब बच्चा जन्म लेता, रोता, कंस को सूचना मिल जाती, कंस आ जाता, देवकी प्रार्थना करती, इसे छोड़ दो, अभी अभी जन्म लिया है, एक दिन का बालक है ये, इसे मत मारो। कंस नहीं सुनता, बच्चे के दोनों पांव पकड़ता और पटक देता उसको, सर उसका सर पटक देता दीवार पर, खून खून खून, क्रूरता से मारता। लेकिन देवकी इंतजार कर रही थी कृष्ण के आने का, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। देवकी इंतजार कर रही थी, पहला पुत्र हुआ कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छह पुत्र मार दिए कृष्ण कंस ने, कृष्ण के छोटे भाइयों या बड़े भाइयों को, और सातवां पुत्र पता नहीं कहां गया, देवकी के गर्भ में था, अचानक गायब हो गया, किसी को नहीं पता कहां गया, वो तो भगवान जानते थे, उन्होंने रोहिणी के गर्भ में उनको स्थानांतरित कर दिया। बलराम जी थे वो सातवें पुत्र। तो आप सोचिए देवकी ने कितना कष्ट लिया केवल कृष्ण को पाने के लिए, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि कब कृष्ण आएंगे। और कृष्ण आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे गोकुल ले जाओ। वो माता पिता जो इंतजार कर रहे थे, जो कष्टों को सह रहे थे, अपने ही बच्चों को मरते हुए देख रहे थे, एक ही आशा में, कृष्ण आएंगे। और कृष्ण आए और क्या कहा, मुझे गोकुल ले जाओ, कुछ ही समय रहे बस, और चले गए। तो बड़ा विचित्र लगता है कि क्यों कृष्ण इतना कष्ट देते हैं अपने भक्तों को। अरे थोड़ा समय तो रह जाते देवकी के पास, मां है, जन्म दिया है, लेकिन कृष्ण चले गए। क्यों? क्योंकि वो देवकी के प्रेम को और बढ़ाना चाहते थे, देवकी का स्मरण बड़ा तीव्र हो गया कृष्ण के प्रति, और वहां गोकुल में लीलाएं की, बहुत सुंदर लीलाएं, कभी पूतना का वध कर दिया, छोटे से बालक थे, कुछ दिनों के बालक, पूतना का वध कर दिया, शकटासुर को मारा, तृणावत को मारा, ऐसे करते करते 3 वर्ष हो गए। जब ये लीला, दामोदर लीला उन्होंने की, करीब 3 वर्ष के थे बालक, तो दीपावली के दिन ये लीला हुई थी। दरअसल ऐसा हो रहा था कि इस लीला के पहले यशोदा के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, हर रोज गोपियां आकर शिकायत करती यशोदा से कि यशोदा ये तुम्हारे कृष्ण को संभालो, तुमने क्या सिखा के रखा है इसको, अरे हमारे घर से चोरी करता है आके, ये क्या सिखाया है तुमने, राजा का पुत्र है, नंद महाराज राजा थे ब्रज के, राजा का पुत्र है, चोरी करता है हमारे घर पे आके, माखन चुरा ले जाता है। तो यशोदा ने कहा अरे चुराता है तो तुम उसको ऊपर रख दिया करो, तुम लोग रखती क्यों हो नीचे उसको चुराने के लिए, ऊपर रख दिया करो। निकाले ऊपर, हम लोग टांग कर रखते हैं तो ये बच्चे एक के ऊपर खड़े होकर उसको तोड़ कर ले जाते। यशोदा ने कहा ताला लगा के रखा करो, ताला बंद क्यों नहीं करते। ने कहा हम ताला बंद करते हैं, ये ऊपर से कूद के आ जाता है खिड़की से, और तो और माखन चुराना तो छोड़ो, वो तो करता ही है, और क्या करता है, बछड़ों को खोल के चला जाता है। अब हमने बछड़ों को बांधा होता है, गाय का दूध निकालेंगे, और ये बछड़ों को खोल देता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, गाय का दूध ही नहीं बचता निकालने के लिए, ये सारे बछड़ों को खोल देता है, और अगर इसको कुछ कहो तो हमें ही चिल्लाता है, हमें ही गुस्सा करता है। अगर हम उसको कहते हैं तुम चोरी करते हो तो गुस्सा कहता कहता वैसे भी तो सब मेरा ही है, मैं चोरी क्या करूंगा। और तो और यशोदा को शिकायत करते थे कि ये इतना बदमाश है कि माखन खा लेता है, सबको खिला देता है, बंदरों को, सबका पेट भर जाता है, और फिर जब हम लोग आती हैं तो हमें कहता है कि अरे तुम्हारा तो माखन इसको कौन चुराएगा, देखना चाहते हो, माखन लेता है, बंदरों के मुख के पास रखता है, और बंदरों का क्योंकि पहले से पेट भरा है तो बंदर मुंह घुमा लेता है, तो वो हमें कहता है कि देखो तुम्हारा माखन तो बंदर भी नहीं खाता, मैं क्या चोरी करूंगा इसको, इतना बदमाश है तुम्हारा पुत्र और बहुत तंग करता। भगवान की माखन चोरी की लीला बहुत, भगवान हर जगह बहुत लीलाएं करते थे। एक समय तो एक गोपी ने कहा कुछ भी हो जाए इसको पकड़ के रहूंगी, पकड़ भी लिया, छुप कर बैठी, पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, कहा आज तो तुम्हें लेके जाऊंगी। यशोदा मानती नहीं है, और यशोदा कैसे माने, नंद महाराज के घर में 9 लाख गायें थी, दूध की नदियां बहती थी, दूध दही माखन इतना था कि कैसे विश्वास करे कि मेरा बेटा जाकर चोरी करता है। अरे क्या आवश्यकता है उसको, उसके घर में कमी नहीं है, क्यों चोरी करेगा। तो गोपी ने कहा आज तुम्हें लेके जाऊं। कृष्ण ने कहा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेके मत जाओ। उसने कहा आज तो नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने धमकी दी, कृष्ण धमकी भी दे देते थे, छोटे से बालक थे, धमकी दी कि देखो अगर मुझे लेकर जाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। उसने कहा आज तो तुम कुछ भी कह लो, यशोदा के पास लेके ही जाऊंगी। चली गई लेकर, हाथ पकड़कर, जल्दी 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 यशोदा के पास पहुंची, जोर से चिल्ला, यशोदा बाहर आओ। तो यशोदा ने कहा क्या हो गया, आज इतना क्यों गुस्से में हो, तुम विश्वास नहीं करती हो, देखो मैं पकड़ कर लेकर आया हूं तुम्हारे लाल को, चोरी कर रहा था मेरे घर पर, तुम्हें विश्वास नहीं है। तो यशोदा ने कहा मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं, देखो ये, ऐसे आगे खींचा उसको, देखो तुम्हारा पुत्र। और देखा तो वो दरअसल उस गोपी का पुत्र था, कृष्ण तो थे ही नहीं। तो यशोदा ने कहा ये तो तुम अपने ही पुत्र को पकड़ लाई हो, अरे तुम्हारा भी पुत्र चोरी करने लग गया। तो उसने देखा अरे ये कहां से आ गया, एक थप्पड़ लगाया उसको, नालायक तू कहां से आ गया यहां पर, कृष्ण को पकड़ के लाई थी मैं। तो फिर वापस ले गई, गलती हो गई, समझ में नहीं आया, चक्कर आ गए, आधे रास्ते पहुंची थी। तो कृष्ण ने कहा मैंने कहा था ना, उसने देखा अरे कृष्ण ये कहां से आ गया, तो फिर से ले जाऊंगी। बोले देखो अगर आपकी बार लेके गई, पिछली बार तो मैं तुम्हारा पुत्र बना था, अब की बार ले जाऊंगी तो तुम्हारा पति बन जाऊंगा मैं। तो ऐसे बहुत सी लीलाएं करते, तो यशोदा सुन रही थी बहुत। तो यशोदा ने सोचा कि अब आज मैं खुद अपने हाथों से माखन बनाऊंगी और कृष्ण को खिलाऊंगी। वैसे यशोदा कार्य नहीं करती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दासियां थी दही मथने के लिए इत्यादि, लेकिन आज उन्होंने सोचा। और उन्होंने एक दिन पहले नंद महाराज की 9 लाख गायों में से 8 अच्छी गायों को चुना, जो बहुत श्रेष्ठ गायें थी, और उन्होंने गोवर्धन पर हरी हरी घास चरी थी, सुगंधित दूध था उनका, उससे दही बनाई थी, और अब सुबह सुबह वो दही मथ रहे थे, और दही मथते मथते वो श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। तो दही मंथन भी हो रहा था और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। दरअसल आध्यात्मिक जगत में जब वृंदावन में कृष्ण कोई लीला करते तो अगले दिन वहां ग्वाल बाल या अन्य लोग उसको गीत बना देते थे। आध्यात्मिक जगत में ऐसा ही है, हमारे जो शब्द हैं बहुत जल्दी गीतों में बदल जाते हैं। तो यशोदा गीत गा रहे हैं, कौन से गीत, वही कृष्ण की लीला है जो उसने की, कृष्ण ने की। तो ऐसे जब वो कर रही थी तो कृष्ण सो रहे थे, और कृष्ण फिर उठ गए सुबह सुबह। वैसे तो हर रोज यशोदा पास में हुआ करती थी, 3 साल का बालक उठते ही सबसे पहले माता को देखता, तो श्री कृष्ण भी माँ को ढूंढने लगे। हर समय तो यशोदा यहीं रहती थी, आज दिखी नहीं, और कृष्ण अपनी आंखें मलते हुए आए, देखने लगे कहाँ यशोदा, तो देखा कि यशोदा दही मंथन कर रहे हैं। तो दही मथने में, आजकल तो शायद आप लोगों को दही मथना क्या होता है पता नहीं होगा, क्योंकि आजकल बटर भी दुकानों में मिलता है और मिक्सी है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही कारण है कि आजकल योगा एक्सरसाइजेस लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती हैं। पहले जो घर की महिलाएं इतना काम करती थी कि उनको कोई योगा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ओवन है, सब कुछ है, मिक्सर है, इसीलिए मेहनत नहीं है, इसीलिए डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाता है। तो यशोदा बहुत दही मथ रही थी। तो मंथन करना मतलब दही को एक मटके में रखा जाता था, एक एक ऐसे डंडा बीच में होता था, उसके दोनों तरफ रस्सी और ऐसे खींचा जाता था। आज भी आप लोग कभी गांव में जाएं तो इसको देख सकते हैं, शायद कुछ गांव में अभी भी बचा होगा ये सब, क्योंकि गांवों में भी आजकल वैदिक सभ्यता रही नहीं है। हमारा जो एक कलयुग का बहुत बड़ा असुर है, जिस जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मतलब सब जगह है, और वो है टीवी। एक ऐसा असुर है जिसने घर घर में घुसकर सब नाश कर दिया, सारी सभ्यता का नाश। 800 वर्ष का मुगल साम्राज्य जो हमारा नाश नहीं कर पाया हमारी सभ्यता का, 200 वर्ष का अंग्रेजों का राज्य जो हमारी सभ्यता का नाश नहीं कर पाया, ये 20-30 साल का ये जी टीवी, एमटीवी और पता नहीं कौन कौन से टीवी हैं, उन्होंने नाश कर दिया। आजकल बच्चे भी, उनको भगवान की लीलाओं का पता नहीं, लेकिन सीरियल में क्या हो रहा है वो सब पता। एक बार हम कहीं पर थे तो कोई एक छोटा बच्चा बोल रहा था, प्रभु जी वो जो है ना वो जोधा अकबर में आने वाली, वो कुछ तो नाम लिया वैसे दिखाई देती। हमने कहा जोधा अकबर क्या है? तो अरे आपको नहीं पता? मतलब बच्चे बड़े आश्चर्य हो गए, आपको यही नहीं पता, आप कौन से जमाने के हैं? तो बच्चों को सीरियल के नाम याद है, सीरियल में काम करने वाले पात्रों के नाम याद है, लेकिन कृष्ण लीला याद नहीं। तो इसीलिए ये हम सबका कर्तव्य है कि हमें जो अपने पूर्वजों से धरोहर मिली है उसको हम आगे अपने बच्चों को प्रदान करें। संस्कार बच्चों को देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आगे चलकर बड़े होकर आपके ही बच्चे आपको ही दोष देंगे, क्योंकि आपने सिखाया नहीं उन्हें, आपने उन्हें अच्छी सभ्यता नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। और यही सब हो रहा है, हम क्षमा चाहते हैं इसे कह रहे हैं, लेकिन आज का समाज ऐसा है। हमारे समाज में कभी कोई बूढ़ा घर नहीं हुआ करता था, आज जगह जगह पर खुल गए हैं। लोग अपने माता पिता की रक्षा नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं देना चाहते, बूढ़े होने पर उन्हें बूढ़े घर में फेंक देते हैं। आप कभी जाइए उन घरों में और देखिए कैसे वे वृद्ध लोग इंतजार करते हैं कि मेरा लड़का कब आए, मेरे बच्चे कब आए, मैं उन्हें मिल सकूं। क्या इस समय के लिए वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं अपनी संतानों को? ये आधुनिकता का प्रभाव है, वैदिक सभ्यता में नहीं होता। वैदिक सभ्यता में कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसका मान सम्मान होता था। वैदिक सभ्यता में बूढ़ों का, स्त्रियों का, बच्चों का, गायों का, ब्राह्मणों का, इन सब का सम्मान होता, रक्षण होता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब, अगर बहुत व्यापक तौर पे ना कर सके तो कम से कम अपने घरों में अपनी संतानों को वो संस्कार दें कि आगे चलकर वो ये हमें उसी चीज को वापस ना दें। एक बड़ी सुंदर कहानी है, एक बच्चा था और उसके एक दादाजी थे जो एक रूम में बंद रहते थे, और उनको एक लकड़ी के कटोरे में बस खाना देने वो जाता था, बंद रखा था बच्चा, उनका लड़का ध्यान नहीं देता था, अर्थात इस बच्चे का पिता। तो एक समय उस लड़के ने उस कटोरे को छुपा लिया, तो बहुत समय ढूंढा नहीं मिला, तब पता चला कि छुपाया। तो उसने पूछा उनके पिता ने, अरे तुमने ये क्यों छुपा लिया, ये कटोरा लकड़ी का, क्या करोगे इसका? उन्होंने कहा मैंने रखा है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि हाय मैं अपने पिता को कैसे ध्यान कर रहा हूं। अर्थात जो हम आज अपने बच्चों को दे रहे हैं वही हमें मिलने वाला है। अगर हम अपनी संतानों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अगर उनको आदर करना नहीं सिखाएंगे, तो कल को बड़े होकर हमें भी यही होगा कि किसी बूढ़ा घर में फेंक दिया जाएगा। ये वैदिक सभ्यता नहीं है, इसलिए इस कल्चर को, इस सभ्यता को बढ़ाइए नहीं, वैदिक सभ्यता को बढ़ाइए। कम से कम अगर वैदिक सभ्यता नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम भगवान का नाम दीजिए उनको, वही शुद्ध करेगा। और इस कलयुग में एक महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना दीजिए अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, और कुछ मत दीजिए, यही नाम उनका उद्धार करेगा। तो श्री कृष्ण अब माता दही मंथन कर रही हैं, श्री कृष्ण आए और उस लकड़ी को पकड़ लिया। छोटे से बालक थे, 3 वर्ष के, उनकी तो जो हाइट थी वो भी वहीं तक पहुंचती थी, मटके तक। किसी तरह पकड़ लिया उस डंडी को, और यशोदा हंसने लगी। जब यशोदा ने अचानक कर रही थी, देखा नहीं था कृष्ण आ रहे हैं, अचानक रुक गया, तो उसने देखा, तो देखा छोटा सा बच्चा, अभी उसके हाथ कितने होते, 3 साल का बच्चा, तो उसने किसी तरह उस लकड़ी को पकड़ा हुआ। यशोदा हंसने लग गई और देखने लगी अब ये आगे क्या करेगा, और फिर वो गोद में चढ़ने लगा माँ की। तो यशोदा समझ गई कि दूध पीना चाहता है। तो उस समय यशोदा ने दही मंथन बंद कर दिया, कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया और उसको स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। दरअसल इस लीला के पहले परीक्षित महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था शुकदेव गोस्वामी से। वो कहते हैं, नंद किम अकरोत् ब्रह्मण श्रेय एवं महोदय यशोदा च महाभागा पपोयस्य स्तनम हरि। वो कहते कि नंद महाराज ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था कि वो कृष्ण उनके पुत्र बन गए, और यशोदा इसका तो इतना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान ने इसके स्तनों से दूध पिया, ऐसा क्या कार्य किया था इन्होंने। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, द्रोण और धरा नाम था इनका, ब्रह्मा जी के आदेश पर तपस्या की और फिर ब्रज में इन्होंने जन्म लिया, अब माता पिता बने। तो अब यशोदा दूध पिलाने लगी, अभी दूध पिला रही थी, कृष्ण पी रहे थे, अचानक यशोदा को स्मरण आया कि उसने चूल्हे पर दूध रखा हुआ है, वो उबल कर गिरने वाला है दूध। यशोदा को एकदम ध्यान आया, उसने बच्चे को नीचे रख दिया और भागी वहां पर। इस स्वाभाविक होता है ना, कभी कभी माँ बच्चे के साथ खेल रही है, कुछ कर रही, अचानक याद आता, अरे अरे रसोई में गैस खुली पड़ी है, फेंक कर भागती। तो ऐसे यशोदा ने जल्दी से रखा और भागी ताकि दूध कहीं गिर नहीं जाए। लेकिन जैसे ही वो गई, कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आया? एक तो भूख लगी थी, सुबह सुबह उठ के आए थे, भूख लगी थी, और दूसरा कृष्ण सोचने लगे कि अरे मैं इसके लिए वैकुंठ छोड़कर आया हूं। वैकुंठ में भगवान के पास कोई कमी है? लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म से विमानम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के धाम में सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, एक लक्ष्मी नहीं, इस जगत में तो एक लक्ष्मी के पीछे पागल है लोग, है ना। दीपावली के दिन तो लक्ष्मी देवी सर्वत्र होती हैं, सबको ध्यान आ जाता है, सब अपने घर। अभी हमें दीपावली के दिन एक भक्त बता रहे थे, पैसे देने नहीं चाहिए, दीपावली के दिन आने चाहिए, घर से पैसा जाना नहीं चाहिए। तो इस जगत में एक लक्ष्मी के पीछे पागल है सब लोग, सही में पागल है, लेकिन उन्हें सही मार्ग नहीं पता लक्ष्मी का। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहां नारायण है। बड़ा सरल है, लक्ष्मी एक सती स्त्री है, वो अपने पति को छोड़कर कभी नहीं रहती, इसीलिए उनका नाम है चंचला। चंचला मतलब अगर लक्ष्मी को केवल लक्ष्मी की पूजा करके रखने का प्रयास करेंगे, लक्ष्मी कभी नहीं रहेंगे, लक्ष्मी रहती है नारायण के साथ। तो अगर लक्ष्मी रखना चाहते हैं तो नारायण की पूजा करनी चाहिए, बड़ा सरल है, लक्ष्मी अपने आप आएंगी, है ना। जो सती स्त्री होती है, जहां उसका पति जाता है वो वहां जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, पत्नी को बुलाते हैं, पति को कहते हैं आप थोड़ा बाद में देखेंगे आपको, आप अलग रहिए, कितना गलत है। आप लोगों से प्रश्न करते हैं, कोई आपके घर पे आए, कहें कि हमारे घर में पार्टी है, कल इतने इतने बजे पार्टी होगी, आप अपनी पत्नी को भेज दीजिएगा, आप मत आइएगा, कैसा लगेगा आपको? शायद आप उसको थोड़ा मार वार दे, ऐसी बातें करता है बदमाश। लेकिन हम लोग सब यही करते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं लेकिन नारायण कोई पूजा नहीं नारायण की। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। तो जिस वैकुंठ में सहस्त्रों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानं, जहां सहस्त्रों लक्ष्मियां श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, उस वैकुंठ को मैं ये यशोदा के लिए छोड़कर आया हूं और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यहां पर, जमीन पर पटक कर चली गई मुझे यशोदा। बताइए सही है कि नहीं। मान लीजिए आप किसी के घर में अपना बड़ा महत्वपूर्ण काम छोड़कर जाते हैं, आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है लेकिन आप नहीं उसके घर जाना है, आप उसके घर जाते हैं और वो आपको कहते जरा यहाँ बैठो मैं आता हूँ, घूमने जा रहा हूँ मैं, आपको कैसा लगेगा? अरे सब कुछ छोड़कर मैं इसके लिए आया हूँ। तो कृष्ण को भी ऐसा लगा, अरे वैकुंठ में कितना बिजी था मैं, कितना काम रहता है वहां पर, अब वहां से छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ और ये कोई मेरी वैल्यू नहीं, जमीन पर पटक कर चली गई। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने एक छोटा सा पत्थर लिया। वैसे आचार्यों ने अलग अलग वर्णन किया है, कोई कहते हैं कि वो आप में से जो उत्तर भारत के हैं वो लोग सिलबट्टा नाम सुना होगा आपने, उस पर चटनी बनाई जाती है, यहाँ क्या कहते हैं उसको पता नहीं है। इस आप लोग जानते हैं कुछ, वो जो एक ऐसा पत्थर होता है उस पर चटनी बनाते हैं, हाँ यहाँ की लोकल भाषा में क्या कहते हैं हमें नहीं पता। तो बट्टा सिलबट्टा होता है, छोटा होता है, तो उसको उठाकर उन्होंने मटके पर मारा और इतनी बढ़िया तरीके से मारा कि केवल एक छेद हुआ मटके में सही जगह पर, वहां पर दही रखी थी, यशोदा ने दही रखी थी, जिसको मत रहे थे उसको मार दिया, तोड़ दिया गुस्से में आके। भागवत में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण को गुस्सा आया तो अपने होंठ दबाने लगे, आंखें लाल लाल हो गई और गुस्से में उन्होंने मार दिया। अब छोटे से बच्चे थे, अब मार तो दिया, सारी दही फैल गई और दही माखन ऊपर रखा था तो उन्होंने उसको भी खाना, तो चलने लगे, अब चले कहाँ, सारी दही फैल गई है, बच्चे थे पता नहीं था कि ठीक से कहीं एक तरफ मारें, तो उसी दही के ऊपर से चल के चल दिए, छप 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 उनके पाँव के निशान बन गए। और अंदर जाकर माखन ऊपर रखा हुआ था तो एक उखल, उखल समझते हैं, उखल होता है उसमें मसाला कूटा जाता, उखल को उल्टा कर दिया, उसके ऊपर खड़े हो गए और माखन उतार कर खाने लगे, खुद भी खा रहे हैं बंदरों को भी खिला रहे हैं। देखिए आज तक तो चोरी दूसरों के घर में करते थे, आज खुद ही के घर में कर दिए उन्होंने चोरी, चुपचाप उठाया और खाने लगे और इधर उधर देख रहे थे, घबरा रहे थे, यशोदा तो नहीं आ रही। और फिर यशोदा आई वापस, यशोदा ने देखा कि अरे ये किसने तोड़ दिया, और देखा कि छोटे छोटे पांव के निशान बने हुए। यशोदा बहुत खुश हो गई लेकिन भागी, अब वो पकड़ना चाहती थी श्री कृष्ण को। यशोदा ने सोचा कि अब तक तो ये बाहर कर रहा था ये मटकी तोड़ना, ये चोरी करना, लेकिन आज घर में ही शुरू हो गया, अगर इसको रोका नहीं तो आगे चलकर पता नहीं चोर बनेगा क्या बनेगा, इसको थोड़ा दंड देना चाहिए। वैसे यशोदा ने आज तक कभी दंड नहीं दिया था श्री कृष्ण को। दरअसल श्री कृष्ण भी सोच रहे थे ये लीला करने से पहले कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, बहुत प्रेम कर रहे हैं सब लोग, कुछ खाने को दे रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन डांट नहीं पड़ रही है, बस यही एक कमी रह गई है, डांटा नहीं यशोदा ने। देखिए कृष्ण भी अब भगवान है तो भगवान के रूप में लोग क्या, बस तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें सब कुछ आप हैं, आप ही आदि कारण हैं, आप ही शास्त्रों के उद्गम हैं, सब आप हैं। अब इतनी प्रार्थनाएं सुन के वो भी थक जाते हैं, अरे कोई तो डांटे उनको, कोई डांटता नहीं, आप में से कोई डांटते हैं? तो ऐसा होता है मंदिर जाते हैं भगवान को डांटने लगते हैं, ये क्या ऐसे ठीक से बैठो, ऐसे कैसे बैठे हुए, कपड़ा ठीक से नहीं पहना, कोई डांटता है? नहीं, हम लोग तो हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं। वैसे भगवान के सामने जाके आंख बंद नहीं करनी चाहिए, भगवान के दर्शन करनी चाहिए, आंखों की पूर्णता होती है भगवान के दर्शन करना। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है हम मंदिरों में जाते हैं हाथ जोड़ते हैं आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, अगर आंख ही बंद करनी थी तो भगवान के सामने आने की क्या आवश्यकता थी, बाहरी आंखें बंद कर लेते। लेकिन हमें भगवान के दर्शन जितना हो सके उतना देख लेना चाहिए। तो खैर यहां पर श्री कृष्ण अभी बड़े क्रोध में हैं, यशोदा भी, तो कृष्ण सोच रहे थे कि मैंने डांट नहीं खाई है तो चलो थोड़ा डांट खाते हैं, इसलिए ये लीला कर दी। तो अब यशोदा आई और उन्होंने देखा तो यशोदा ने सोचा कि इसको दंड देना चाहिए, अगर दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा। देखिए माता पिता का एक कर्तव्य होता है बच्चे को किसी ना किसी तरह सही मार्ग पर लाना। तो फिर यशोदा ने छड़ी उठा ली हाथ में और श्री कृष्ण घबरा गए। आचार्य वर्णन करते हैं सही में घबरा गए, नाटक नहीं कर रहे थे, पहले तो झूठे आंसू लाकर नाटक कर रहे थे, जब यशोदा चली गई तो आंसू लाकर ऐसे पोंछ रहे थे, नाटक कर रहे थे, लेकिन अब डर गए क्योंकि यशोदा ने पहली बार छड़ी उठा ली हाथ में और यशोदा भागी इनको पकड़ने के लिए। दरअसल ये श्री कृष्ण इस जगत में उन लोगों को बांध देते हैं जो चोरी करते हैं, जो क्रोध करते हैं, उन लोगों को बांधते हैं जो कष्ट कष्ट के द्वारा बांध देते हैं इस जगत में। तो आज उन्हें बंधना था क्योंकि उन्होंने क्रोध किया, चोरी की, अब उन्हें दंड मिलना था, और आज कृष्ण को बंधना था। तो कृष्ण भागने लगे, बड़ी तेज भाग रहे थे। अब सोचिए 3 साल का बालक और यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। बहुत सुंदर वर्णन भागवत में किया गया है, यशोदा के पसीने आ रहे हैं, यशोदा के बालों में लगे हुए फूल गिरने लगे। वैसे एक एक आचार्य ने बहुत सुंदर टिप्पणी की है इस पर, वो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चिन्मय है। चिन्मय मतलब हर चीज में प्राण है। भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो 3 प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक लीला को कहते हैं चिन्मय लीला, दूसरी लीला सृष्टि लीला और तीसरी कृपा लीला। चिन्मय लीला भगवान आध्यात्मिक जगत में करते हैं, तो इसे चिन्मय जगत है वो, तो वो आध्यात्मिक जगत में होती हैं। वहां पर भगवान असुरों का वध नहीं करते क्योंकि वहां असुर है ही नहीं, असुरों का वध करने के लिए यहां आना पड़ता है हमें। तो चिन्मय लीला आध्यात्मिक जगत में होती है, सृष्टि लीला मतलब ये जो भगवान ने सारा जगत बनाया है एक उद्देश्य से बनाया है जगत को भगवान ने। कोई घड़ी थी ना जगत, एक उद्देश्य से बनाया है भगवान ने इस जगत को। क्या उद्देश्य है भगवान का इस जगत को बनाने का? एक प्रमुख उद्देश्य, श्री कृष्ण चाहते हैं हम सब भगवान के धाम वापस जाएं, एक ही उद्देश्य है। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान ने कष्ट क्यों दिए इस जगत में, अगर भगवान ने ये जगत हमारे लिए बनाया है तो फिर कष्ट क्यों, दुख क्यों इस जगत में? तो दुख क्यों देते हैं भगवान? आप देखिए दुर्गा देवी, दुर्गा देवी इस दुर्ग की, इस जगत को दुर्ग कहा गया, दुर्ग यानी किला, तो वो दुर्गा है मतलब इस किले की किलेदार है दुर्गा देवी, और उनके हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। और दुर्गा देवी इस त्रिशूल से हमें कष्ट देती रहती हैं। तो प्रश्न आता है कि अगर भगवान ने जगत हमारे लिए बनाया है तो दुख क्यों है, कष्ट क्यों है इस जगत में, और क्या भगवान कष्ट को दूर नहीं कर सकते? हम सब तो उनकी संतानें हैं। भगवत गीता में भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर् अहम् बीज प्रदापिता। कृष्ण कहते हैं मैं सबका पिता हूं, ऐसी घोषणा किसी ने नहीं की है किसी शास्त्र में। श्री कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। तो अगर वो हमारे पिता हैं तो हमें कष्टों में देखकर क्या खुश होते हैं, क्या उन्हें आनंद आता है? और उनके अंदर तो शक्ति है, वो तो हमारे कष्टों को ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते नहीं। क्यों? क्या प्रेम नहीं है हमसे? अरे अगर हमारे हम की संतानें हैं, हमसे कोई गलती भी हो गई मान लीजिए, तो संतान के रूप में क्षमा कर देना चाहिए, फिर कष्ट क्यों देते हैं इस जगत में? भगवान ने जगत बनाया ही है कष्ट के लिए, इसीलिए उसको कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है ये दुख का आलय है। आलय यानी भंडार, जैसे हिमालय ये हिम का भंडार है, विद्यालय विद्या का भंडार है, मदिरालय मदिरा का भंडार है, ऐसे ये जगत दुखालय दुख का भंडार है। तो यहां तो दुख होंगे ही, और श्री कृष्ण दुख इसलिए देते हैं ताकि हम यहां से जल्दी बाहर जा सकें, ऐसे जगत में जहां दुख नहीं है। कभी कभी ये कल्पना लगता है, हम लोग सुनते हैं कैसा जगत जहां जन्म नहीं है मृत्यु नहीं, कल्पना है हम लोग सोचते हैं, हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, केवल केवल हमारे अनुभव में नहीं है इसीलिए नहीं हो सकता। हमने तो भगवान को भी नहीं देखा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, आप भगवान की बातें करते हैं, कृष्ण राम की बातें करते हैं, किसने देखा है? और अगर आपने देखा है तो आप दिखाइए हमें भगवान, तब मानेंगे भगवान है। चुनौती देते हैं। हमसे एक बार किसी एक व्यक्ति ने पूछा था ऐसा प्रश्न, हम कहीं जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, हमने उनसे पूछा आपने क्या किया है, उन्होंने कहा इंजीनियरिंग की है। हमने कहा क्या आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री हमें दे सकते हैं अभी? तो उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए आपको कॉलेज जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी, और जब आप पढ़ाई करके एग्जाम पास करोगे तब इंजीनियर बनोगे। हमने कहा यस, जब इंजीनियर बनने के लिए हमें कॉलेज जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी, डिग्री लेनी होगी, एग्जाम देना होगा, तो क्या भगवान को देखने के लिए ये सब नहीं करना होगा? भगवान बड़ी सरलता से मिल जाएंगे। हमने कहा आपके अंदर बुद्धि है तो आप ही सोचिए, एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए व्यक्ति को कॉलेज जाना होता, पढ़ाई करनी होती, एग्जाम देना होता, तब डिग्री मिलती है, तो फिर भगवान को पाने के लिए क्या किसी कॉलेज में नहीं जाना है, क्या कोई पढ़ाई नहीं करनी है, क्या कोई डिग्री नहीं लेनी है, सीधे भगवान को देखेंगे। दरअसल लोग बाकी चीजों में इतना प्रश्न नहीं करते हैं जितना भगवान के विषय में। जहां भगवान की बात आती है हम नहीं मानते, बाकी सब मान लेंगे। एक बार किसी लड़के ने कहा हमसे कि मैं जो चीज देखता नहीं हूं उसको स्वीकार नहीं करता, मैं देखता हूं तो ही मानता हूं कि वो है, नहीं तो नहीं मानता, इसलिए आप मुझे भगवान दिखाइए तो मैं मानूंगा। हमने कहा एक बात बताइए, आपने अपने परदादा को देखा है? परदादा मतलब उनके पिता के पिता के पिता। हमने कहा आपने देखा है? बोले नहीं। आप मानते हैं वो थे? बोले हाँ। हमने कहा अभी आपने कहा जो चीज आप देखते नहीं उसको मानते नहीं है, फिर कैसे मान लिया कि आपके परदादा हैं? अरे वो तो सब जानते, हमारे पिताजी ने हमें बताया। हमने कहा इसी तरह कृष्ण है, ऋषि मुनियों ने हमें बताया, क्यों नहीं स्वीकार करते हो? तो लोग बेकार के आर्ग्यूमेंट करते हैं। भगवान है और अगर हम श्रद्धा से उनको पाने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमें उस अनुभव को भी कराते हैं। तो इसीलिए भगवान की भक्ति बड़ी आवश्यक है इस कलयुग में, इस कष्टों के समय में, दुखों के समय में। जीवन में संतुष्टि और आनंद पाने का अगर कोई मार्ग है तो वो है भगवान की भक्ति, अन्यथा हम लोग जीवन भर केवल सुख की खोज करेंगे और अंत में सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता है श्री कृष्ण का अंत में स्मरण करना, अंते नारायण स्मृति ही, श्रीमद् भागवत कहता है। ये जीवन की सफलता है कि अगर हम अंत में श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें। तो यशोदा भाग रही हैं तो हम बता रहे थे कि उस जगत में सब कुछ चिन्मय है, फूल भी चिन्मय हैं, और फूल सोचने लगे कि अरे यशोदा इतनी महान है, आज ये उन कृष्ण को पकड़ने जा रही है जिनको बड़े बड़े योगी पकड़ नहीं सके, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सकते, प्रयास करते हैं श्री कृष्ण पकड़ में नहीं आते, आज यशोदा पकड़ने वाली है, तो हमें इनके सर पर नहीं इनके चरणों में रहना चाहिए। इसलिए फूल उनके सर से गिरकर उनके चरणों में आ गए। यशोदा भाग रही हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। यशोदा का शरीर थोड़ा भारी है, यशोदा थोड़ी सांवली है, वो भाग रही हैं, और फिर श्री कृष्ण और तेज भाग रहे हैं। यशोदा बस पकड़ने जाती है, फिर भाग जाते हैं। लेकिन यशोदा ने भी सोचा कि नहीं, पकड़ना तो है। और फिर कृष्ण ने देखा मां बहुत थक गई है, पसीना आ गया है, हांफ रही है, तो श्री कृष्ण का बस अब पकड़ में आ जाता। और फिर श्री कृष्ण पकड़ में आ गए। अब यशोदा के हाथ में छड़ी है, श्री कृष्ण को पकड़ा, लेकिन यशोदा को लगा कि अगर ये ज्यादा मैंने इसको डरा दिया, कहीं घर वर छोड़कर भाग गया, जंगल में चला गया, तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत छड़ी को फेंक दिया ताकि डरे नहीं, लेकिन कोई तो दंड देना था। तो यशोदा ने सोचा बांध देती हूं इसको, उसी उखल से बांधती हूं, क्योंकि वो उखल भी चोरी में शामिल था। उसी के ऊपर खड़े होके तो कृष्ण चोरी कर रहे थे, तो उखल से बांध देती हूं, दोनों बन जाएंगे। तो उसने उस उखल को लिया, इसीलिए इस लीला को उखल बंधन लीला भी कहते हैं। तो उस उखल को लिया, यहां इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहां यशोदा ने बांधा है, ये दामोदर लीला उखल बंधन लीला है। तो यशोदा ने बांध दिया, और बांधा कैसे, बहुत सुंदर वर्णन है। गोकंठ पाशे न निबध्यमानम, गायों को बांधने वाली रस्सी से बांध रही है श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण बंध रहे हैं। लेकिन यशोदा ने एक रस्सी ली, बस बांधने वाली थी कि रस्सी दो उंगली छोटी हो गई, केवल दो उंगली छोटी, यहां तक आई, बस दो उंगली का गया। यशोदा ने सोचा ठीक है, दूसरी रस्सी ली, उसको बांधा उस रस्सी से, रस्सी लंबी हो गई, फिर बांधने का प्रयास किया, फिर दो उंगली छोटी। अरे यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कृष्ण की जो कमर है वो तो एक मुट्ठी के समान है, बस तीन हाथ का तो पूरा है ये, और एक मुट्ठी के समान कमर है इसकी, और इतनी बड़ी रस्सी दो उंगली छोटी हो रही है। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, उसने और एक रस्सी ली, उसको बांधा, फिर बड़ी की, फिर बांधने का प्रयास किया, दो उंगली छोटी, यहां तक आती थी बस, और दो उंगली का अंतर रह जाता था। यशोदा बड़ी परेशान, ये बड़ा आश्चर्य, उसने और रस्सियां ली, बांधने लगी। अब ये खबर फैल गई सब जगह कि कृष्ण बंध रहे हैं, और बंध नहीं रहे हैं, कृष्ण बंध रहे हैं लेकिन बंध नहीं रहे हैं। मतलब कृष्ण को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, वो बंध नहीं रहे हैं। सारे ब्रज में समाचार फैल गया, सब गोपियां आ गई और सब हंस रही हैं। देखिए कृष्ण का प्रभाव, कृष्ण का प्रेम गोपियों का, कि इतना सब होने पर भी भगवान नहीं मानती है उन्हें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा अरे रे ये तो भगवान है, बोले नहीं, हंस रही है, आनंद आ रहा है गोपियों को। और कुछ कुछ गोपियां अब यशोदा से कह रही हैं, यशोदा तुम्हारा जो लाल है उसके मस्तक पर वंदना लिखा ही नहीं है, प्रयास मत करो। लेकिन यशोदा ने कहा नहीं, आज तो इसे बांध कर ही छोड़ोगी। और यशोदा ने और रस्सी ली और गोपियों से कह रही जाओ रस्सी लेकर आओ। और गोपियां ला ला के दे रही हैं रस्सियां, हंसते हंसते, बड़ा आनंद आ रहा है उन्हें देखकर, यशोदा के पसीने छूट रहे हैं। और यशोदा बांधती है एक रस्सी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, लेकिन हर बार रस्सी दो उंगल छोटी, बस दो उंगली, इतने तक पहुंच जाती थी, बंद नहीं पाती थी। यशोदा ने बड़ा प्रयास कर लिया, सारी रस्सियां ले आई। एक स्थान पे तो वर्णन है जितनी ब्रज में रस्सियां थी वो आ गई। यशोदा ने कहा आज छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो देखिए ऐसी अवस्था में भी उन्हें भगवान नहीं मान रहे हैं, ब्रज के लोग उन्हें भगवान नहीं मानते थे। एक समय ऐसा हुआ, ग्वाल बाल खेल रहे थे, अचानक वहां पर देवता आ गए कृष्ण की पूजा करने के लिए। ब्रह्मा जी आए, अन्य देवता आए, आरती करने लगे। श्री कृष्ण बैठे हैं, वो लोग आरती कर रहे हैं, और सारे ग्वाल बाल देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा मित्र है, हम तो इसके कंधे पर चढ़कर खेलते हैं, और ये चार मुंह वाला आदमी आकर कुछ तो आरती कर रहा है, क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब वो चले गए तो सोचिए, अगर आप ऐसे किसी को देख लें, आपके सामने किसी व्यक्ति की पूजा ब्रह्मा जी आकर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दंडवत प्रणाम, महाराज भगवान, ग्वाल बालों ने क्या किया, जब वो चले गए तो कृष्ण को बिठाया और एक ब्रह्मा बन गया और वो ब्रह्मा जी की नकल करने लगा और हंसने लगे, ओहो तुम्हारी तो ऐसे पूजा कर रहे थे ना, वो चार मुंह वाला कौन था वो, हाँ वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो सब आनंद ले गए, किसी ने कहा नहीं कि भगवान है। भगवान खुद कभी कहते भी हैं कि मैं भगवान है तो मानते नहीं है। अभी आगे इसी लीला में आएगा, श्री कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन है। तो यशोदा ने बड़ा प्रयास किया कि किसी तरह रस्सी बंध जाए, लेकिन हर बार ये दो उंगली छोटी थी। तो ये दो ही उंगली छोटी क्यों हुई रस्सी, इसका वर्णन आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से किया है, जो हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमें ज्ञान देने के लिए है, ये कोई चमत्कार नहीं था। ये दो उंगली छोटी होना ये हमें ज्ञान देने के लिए है। और बहुत सुंदर वर्णन आचार्यों ने किया है इस दो उंगली का, और इस वर्णन को हम कल सुनेंगे कि क्या यशोदा बांध पाई या नहीं, प्रयास तो कर रही थी, तो दो उंगली छोटी क्यों हुई, और अगर बांध लिया तो उसके बाद क्या लीला हुई। बहुत सुंदर लीला है। जैसे हम बता रहे थे कि श्री कृष्ण कभी कभी अपने आप को भगवान कहते हैं और लोग क्या उसके बातें करते हैं, तो इस लीला में भी ऐसा ही होगा आगे। तो क्या उत्तर यशोदा देंगी और कैसे कृष्ण बंधेंगे, ये सब वर्णन अब कल इस लीला के आगे वर्णन को करेंगे। बहुत सुंदर लीला है। कृष्ण ने बंधने के बाद दो वृक्षों का उद्धार किया जो देवताओं के पुत्र थे, तो उनका उद्धार किया। ये भी लीला कल हम लोग सुनेंगे कि कैसे उनका उद्धार किया। तो और इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं, तो ऐसे कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, दामोदर लीला विशेष करके। अभी तो केवल प्रारंभ हुई है ये लीला, कल जब विस्तार से और वर्णन होगा तो निश्चित है इस लीला का आनंद आप सब उठा सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग एक भजन प्रारंभ करेंगे। किसी के भी कोई शंका कोई प्रश्न मन में हो, आप अगर हाथ उठाएं तो शायद माइक होगा तो पहुंच सकेगा आप तक। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो अभी भजन गाएंगे एक। ये दामोदर अष्टकम है, सत्यव्रत मुनि ने इसकी रचना की है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। और पद्म पुराण में ये कहा गया है कि कार्तिक के महीने में, अर्थात जिस महीने में अभी हम लोग हैं, दामोदर महीना, इसमें इस दामोदर अष्टकम का पाठ रोज होना चाहिए। भगवान को दीप, हरे कृष्ण भगवान को साउंड, हरे कृष्ण, तो भगवान को दीप अर्पण होना चाहिए। तो आज आपके लिए दीप की भी व्यवस्था हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण समय है, ये कार्तिक का महीना भक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस दामोदर अष्टकम को पाठ करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद दीपदान होगा। तो आप सब कृपया इस दामोदर अष्टकम को साथ में गाने में सहयोग करें। और कल, व्हाट आर यू डूइंग, पुट इट, लेट इट द स्लाइड शो।
Continue to speak.
सो यू कैन जस्ट आगे करना है उसको भी. यू नो हाउ टू डू इट. ओके, ये जो दामोदर अष्टकम है ये 8 श्लोक हैं. 8 श्लोकों में श्री कृष्ण की इस दामोदर लीला का वर्णन है और साथ ही साथ श्री कृष्ण से एक प्रार्थना है. पहले हम इसके अर्थ को आपको बता देते हैं, क्योंकि जब आप गाएंगे तो आप क्या कह रहे हैं अगर ये पता होगा तो गाने में आनंद आता है. तो भगवान से प्रार्थना है तो आपको केवल पहले इसका अर्थ बताते हैं और फिर ये गाएंगे, और गाने के बाद आप सब लाइन से आकर भगवान को दीप अर्पण कर सकेंगे. दीप अर्पण करने की पद्धति भी बताएंगे, जैसे जब वहाँ पर आपको दीप दिए जाएंगे जलाकर, आपको लाकर केवल भगवान को अर्पण करके फिर उधर नीचे रख देना है उन दीपों को, और फिर आप प्रसाद लेने के लिए जा सकेंगे. आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, तो आप सबसे विनती है कि कृपया कोई भी बिना प्रसाद लिए यहाँ से न जाएं, क्योंकि जब ऐसे अनुष्ठान होते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस समय यहाँ हो रहा है. हालांकि हम लोगों को लग रहा है कि बस ठीक है, हम लोग कुछ समय आए हैं, थोड़ा बहुत कुछ सुनेंगे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ये भगवान के प्रति कार्य है, तो यहाँ की हर चीज़ महत्वपूर्ण है. भगवान के विषय में सुनना, भगवान को दीप अर्पण करना, कार्तिक के महीने में इसको कहा गया है. एक बहुत सुंदर कथा पुराणों में आती है, अभी हमें याद आया दियों को देखकर. कार्तिक के महीने में एक दिया जल रहा था भगवान के सामने, तो धीरे धीरे वो बुझ रहा था, उसकी जो लौ थी कम हो रही थी. एक चूहा वहां पर आया और उस चूहे ने, उसको घी की सुगंध आई, घी का दिया था तो घी की सुगंध आई, तो चूहा वो घी खाना चाहता था, तो उसने उसको खाने के लिए मुंह मारा तो जो लौ थी वो ऊपर हो गई और तेज हो गई, बुझ रही थी प्रायः वो तेज हो गई, और जब तेज हो गई तो जो चूहा था उसके बाल जल गए, और जैसे वो जलने लगा तो जोर जोर से कूदने लगा, क्योंकि जल रहा था तो कूदने लगा, तो कूदने लगा उस समय, तो फिर जल गया और मर गया, मृत्यु हो गई. लेकिन उसको भगवान ने बहुत अच्छा स्थान दिया, जानते हैं क्यों? क्योंकि कार्तिक का महीना था और उसने दो अच्छे काम किए. पहला, दीप जलाया, भगवान का दीप बुझ रहा था, उसने दीप जला दिया, भगवान ने उसको सेवा स्वीकार कर ली. और दूसरा, उसने भगवान के सामने नृत्य किया. वो कूद रहा था तो भगवान ने उसको नृत्य के रूप में स्वीकार किया, बहुत अच्छा, बढ़िया नृत्य किया. तो इन दो कारणों से बहुत अच्छा स्थान उसको दे दिया. तो इसी तरह हम सबको भी भगवान को दीप अर्पण करना है, और अगर नृत्य कर सके तो नृत्य भी करना है. वैसे भगवान के सामने नृत्य करना ये शास्त्रों में वर्णित है. हमें भगवान के सामने भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए. तो ये जो दामोदर अष्टकम है इसका अर्थ आपको बता के फिर ये गाना प्रारंभ करेंगे. इसके 8 श्लोक हैं. पहला श्लोक कहता है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम. नो लेटर व्हेन वी सिंग देन यू कैन कीप इट अंडर फर्स्ट. तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, अर्थात सबसे पहले सत्यव्रत मुनि ईश्वर, नमाम ईश्वरम, हे ईश्वर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमाम ईश्वरम. और कैसे हैं आप? सच्चिदानंद रूपम, आपका सच्चिदानंद रूप है. लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, आपके जो कुंडल है कानों में वो हिल रहे हैं और आप ऐसे गोकुल में लीलाएं करते हैं. यशोदा भियोलूख लाधवमानम परामृष्टम अत्यंत दृत्य कोप्या. तो यशोदा ने, यशोदा के डर से, भियोलूख कि आपको यशोदा का डर था तो आप डर कर भाग रहे हैं, लेकिन यशोदा ने आपको पकड़ ही लिया है और आप उससे डर रहे हैं. रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातम कनेत्रम. तो रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम. कृष्ण जब यशोदा ने पकड़ लिया तो रोने लगे और रोते रोते अपनी दोनों हाथों से ऐसे ऐसे मल रहे थे आंखों को, उनका जो काजल लगा हुआ था वो सारा बह गया आंसुओं में, झूठे आंसू थे लेकिन फिर भी आंसू थे। मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रहिवं दामोदरं भक्तिबद्धम। तो मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा, जो गला था इसमें सांस फूल रही है, जैसे बच्चे होते हैं ना जब रोते, ऐसे श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ इति दृक्स्व लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निबर्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तो ऐसे श्री कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और इसमें भक्त बड़े आनंद लेते। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। तो इसलिए शतावृत्ति बार बार, सौ बार, हजार बार आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल भक्ति से ही जीते जा सकते हैं। और अब प्रार्थना करते हैं। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेषादपिह। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, ऐसा वर मत दीजिए कि मुझे मोक्ष मिले या कोई इस जगत का भौतिक जगत का भी आनंद मुझे नहीं चाहिए। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम कि मन्ये। मेरी प्रार्थना क्या है कि वो गोपाल, वो गायों का पालन करने वाले, वो छोटे से बालक, वो केवल मेरे मन में विराजमान हो। इदं ते मुखाम भोजम अत्यंत नील वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। ये भगवान का वर्णन है कि कैसा उनका मुख है, कैसे उनके अधर हैं। मुहुश्चुंबित बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ता मलम लक्ष्य लाभ है। तो ऐसे भगवान को अपने मन में विराजमान करना चाहिए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम। कि हे विष्णु, हे दामोदर, हे अनंत, आपको प्रणाम है। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु गृहाणेश माम अज्ञ मेध्यक्षि दृश्य। तो आपकी अगर कृपा हो मेरे ऊपर तो मैं ज्ञान में आ सकूं। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत्। आपने उखल में बंधे रहकर कुबेर के दो पुत्रों को मुक्त किया था। त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौचा। ये लीला का वर्णन अब होने वाला है, जब यशोदा बांध देंगी तो उसके बाद ये लीला आएगी। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदरेहा। तो जो भक्ति आपने उनको प्रदान की, नलकूवर मणिग्रीव, ये हम कल चर्चा करेंगे इसलिए आज विस्तार में नहीं कर रहे हैं, तो वही भक्ति, वही प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। और अंत में वो कहते हैं, नमस्ते स्तु धामने स्फुर दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने। कि अब मैं प्रणाम करता हूँ सबसे पहले तो उस रस्सी को जिसने आपको बांधा, फिर आपके उदर को, उदर यानी पेट बांध दिया जिसको बांधा, त्वदीयो दराया था विश्वस्य धामने, क्योंकि आपका उदर में सारा विश्व रहता है। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो अब मैं अंत में प्रणाम श्रीमती राधा रानी को करता हूँ, क्योंकि क्यों करता हूँ, त्वदीय प्रियाय, आपको बहुत प्रिय हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, फिर आपको प्रणाम करता हूँ जो अनंत लीलाओं को करते हैं। तो ऐसे ये दामोदर अष्टकम है। आप में से जिन लोगों ने पूरे कार्तिक महीने में इसको नहीं गाया हो, आपसे प्रार्थना है, अभी भी कार्तिक 25 तारीख तक है, तो आप रोज़ इसको गाएं। अगले 3 दिन तो आप यहीं आएंगे, 2 दिन तो हम लोग यहीं गाएंगे, दीप अर्पण करेंगे, और इसके अलावा भी जब आप घर पर जाएं तो कृपया इसको रोज़ गाएं कार्तिक में कम से कम, और एक दीप भगवान को शाम को अर्पण करें। तो ये दामोदर अष्टकम है, अब इसका पाठ करेंगे। आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये दिखाया जाएगा और आप उसको देखकर गा सकते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंदरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले अब सब गाते हैं।
रामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्तके
प्रयास कीजिए जो से
यशोदाभियो लोकलाघवमानम् ृष्टमत्यन्तोदन्तमोहनेत्रमृजन्तम् परां भोजवर्णेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमोहुर्नेत्रयुग्मृजन्तम् परां भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासुकं पात्रिरेखपकण्ठम् सिद्धग्रेव दामोदरं भक्तिभक्तम् मुहुश्वासुकं पात्रिरेखपकण्ठम् सिद्धग्रेव दामोदरं भक्तिभक्तम् ृक्फलिलाभियानन्दकुन्दे सहोषमेव जन्तमाख्यपयन्तृक्फलिलाभियानन्दकुन्दे शमेन जन्तं माख्यपयन्तशीतज्ञेषु भक्तचितत्वं पुनः प्रेम कथं शक्नोतिवन्दे शीतज्ञेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेम कथं शक्नोतिवन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावलम्बम् ृणेभङ्गरे जगति परं देवमोक्षं न मोक्षवरिन्द्रान्यमृणेभङ्गरे जगति सुनते बतुल नाथ गोपाल बालन शरण मन चाहे मन सुनते बतुल नाथ गोपाल बालन मन चाहे मन अनंत मुखां भोजन अत्यंत नीलम हृतं कुन्तलमिद्धरतश्च गोपा भोजन अत्यंत नील हृतं कुन्तलमिद्धरतश्च गोपा शृंगे तांबिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरस्तमलं लक्षलाभे मुहुश्मितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरस्तमलं लक्षलाभे देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख छाया दिमात्मा नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख कृपा दृष्टि दृष्टाति दीन बतानु विहाने क्षमाद्य में भक्ति दृष्टा दृष्टि दृष्टाति दीन बतानु विहाने क्षमाद्य में भक्ति दृष्टा विदुरात्मजो बद्ध दैव यथ परामुचित भक्ति भाजो कृत कुबेरात्मजो बद्ध दैव यथ परामुचित भक्ति भाजो कृत प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छ मुक्ष दहो में स्थित दामोदर तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छ हो में स्थित दामोदर स्तुतामे सुरजति धामे उदरायात विश्वस्य धामे। नमस्ते सुधामे सुरजति धामे उदरायात विश्वस्य धामे। नमो राधिकाय पदेय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय पदेय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय पदेय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे।
आप ये पद गाइए भगवान का नाम है।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे।
अभी आप सबके लिए अवसर है, कीर्तन होता रहेगा, आप सब एक लाइन से आकर यहाँ से दिया ले सकते हैं। दिया लेकर आप भगवान को श्रील प्रभुपाद को दिखा के फिर दिया यहाँ आगे इस टेबल पर रख सकते हैं। कृपया एक लाइन से आएंगे तो सभी के लिए अवसर है, सबको दिया मिलेगा, लेकिन आप एक लाइन में आए, दिया यहाँ रख के फिर आप प्रसाद के लिए पीछे जा सकते हैं। तब तक कीर्तन जारी रहेगा, कृपया कीर्तन। हमें दो तीन वॉलंटियर्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे दिए देने के लिए। कृपया दो तीन लोग यहाँ मदद के लिए आए दिया देने के लिए। जल्दी जल्दी जला के दें ताकि समय नहीं लगे। कीर्तन चालू कीजिए। यहाँ दिखाना है, बाद में रखना है। एक भक्त कोई पहले आगे दिया दिखा सकते हैं ताकि सबको पता चले।
देवकी कुमार को कीर्तन
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
Thank you.
कार्यक्रम हम लोग ठीक साढ़े छह बजे शुरू करेंगे, तो आपसे विनती है कृपया समय पर आए। कल भी कथा होगी और उसके बाद ऐसे ही गीत दान करने का अवसर आप सबको मिलेगा, तो कृपया कल ठीक साढ़े छह बजे आप सब आइए ताकि कथा पूरी हो सके, समय पर प्रारंभ हो सके और फिर बाद में दानों में रख सका और गीत दान आप शुरू करें। हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare 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 Rama 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 Hare Hare
ऊपर कैसे चले, किधर है?
इधर इधर।